ये ज्ञान तत्व ही या ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं ये रहस्य कहीं ये दुख विषय एकाई में परिणत है, बल्कि एकत्व में बहुत बहुत्व में एकत्व ये तो है हमारे शास्त्र कारण माना है एक बहुत इत्यादि बताते हैं इसी के हम लोग सब हैं। किंतु कभी भी जीव ब्रह्मा भगवान नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ये गीता उपदेश में कहीं भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर विश्वान जो लाभा मुक्ति मुक्ति जी के अन्यथा रूपम स्वरूप जैसी हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे भगवान की सेवा करेंगे। ये दिशा ये जो ज्ञान की बातें जो कही गई इसी तो प्रदर्श्य का आधार था समाधि सत्य सदा इत्यादि जहाँ पर वाणी दिशा अर्जुन में इस बुद्धि जिनकी बुद्धि थी वो जो कौन थे तो इसलिए उन्होंने क्या पांच प्रश्न किए इसका जो उत्तर है वही कौन ही स्थिति है और इसकी अंतिम अवस्था है ब्रह्म दूत प्रसन्नात्मा सोचती मतांशती समस्त सर्वेश भूतेषु मत भक्ति ये बतला जिसको ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत की स्थिति क्या है वो द्वितीय अध्याय में बतला गया उसी को मैं बता रहा हूँ। दिव्य हानि लाभ कुछ भी हो उसमें दुखों की अनुभिन्न कौन सुखों की दुखों की विगत स्थिति है सुख में आकांक्षा उसकी कामना और जितने महाविघ्न हो गया संभव हमारे श्रीमद्भागवत गीता में भी आचार बतलाए गए श्रीमद्भागवत में आचार यदि दुख अपने आप बिना बुलाया जाता है तो कुछ भी आ जाएगा इसलिए मैं सत्र आके ऊपर सब लोग जैसे आई गए करें ये तो आई है आय करना है वो अपने आप होगा भाई इसलिए जो मैं भगवत भक्ति की आत्मज्ञान के लिए चेष्टा करें भगवत भक्ति के लिए चेष्टा करें ये गीता का सब हर लोग में दुख ये करें यदि सत्य को हम जाने कि ये सुख और दुख आएगा शरीर आग न चल जाएगा जब जन्म लिया है तो मरेगा ही रोग भी जरूर होंगे ये शरीर के लिए शरीर के जाने के लिए हम मर नहीं जाते आत्मा में ये तो आत्मा के साथ ही शरीर का मिलन जन्म और विक्रम के मृत्यु हम लोग करते हैं और इसलिए शोक में हम निजे नाम नहीं करते अपने कर्म से दूषित हो जाते हैं इसलिए आशा न करते इन चीज़ों को समझ करके ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सत्य में प्रसन्न रहता है न सोचती न शोक करता है और न किसी व्यक्ति की आकांक्षा करता है संसार में जितनी की बुराइयों की जड़ और अशांति की जड़ ये कामना है यदि हृदय में कोई कामना नहीं संसार के बच्चों के प्रति तो न तो उसे क्रोध होगा न उसे कोई दुख होगा न कभी उसका चित्त उद्विग्न होगा इसलिए भक्ति के लिए भी इस स्थिति की जरूरत है ज्ञान के लिए भी स्थिति की जरूरत है जगत में सुख और शांति के लिए भी स्थिति की आवश्यकता है न सोचित न पान सकी समस्त सर्वभूत समस्त प्राणी में समय और ऐसा व्यक्ति अंत में पाप भक्ति अथवा प्रेम भक्ति बात करता है भगवान की साइड में जिसे भगवान भी उसके द्वारा भक्ति भेंट हो जाता है जिसका वर्णन सुमित भागवत के दशम स्कंध इत्यादि में विशेष रूप से वर्णन किया गया हम इसके ऊपर में केवल एक सुख विजिंगम देखी को इसका विचार करना तीसरा है जिस यथर पहला दूसरा बता ब्रह्म ज्ञान और कुछ परमात्म ज्ञान भी हमें यद्यपि ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही वस्तु है क्योंकि तीन प्लेटफार्मों से हम इसको देखते हैं टीवी के अधिकारी इसको देखते हैं एक ज्ञानी एक योगी एक भक्त ज्ञानी उन्हीं को परमात्मा ब्रह्म के रूप में देखता है योगी लोग उनके परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं सत्य रूप में और भक्त लोग उन्हीं को भगवान के रूप में दर्शन करते हैं यदि और किसी को तीसरी सीढ़ी पर यदि चढ़ना है कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके अंदर में साक्षी के रूप में परमात्मा विराजमान है वो विष्णु इसीलिए है कि व्यापक संकट है सबके वो पोषता है सबका वो पोषण करने वाले हैं अंतर्यामी है करके ये नियामक है। इसलिए जज्ञा था तो कर्म में लोक अनमत पर कर्म बंधन कोई सुख दुख को समान करने से नहीं चलेगा, केवल ब्राह्मिक स्थिति होने से ही काम नहीं चलेगा। प्रभु का कुछ ध्यान भी होना चाहिए, प्रभु के साथ में कोई संबंध भी होना चाहिए, तो ये कैसे होगा? इसलिए वो बतला रहे हैं निष्काम भी होना होगा, यदि नहीं है तभी कोई बात नहीं। जब जाता तो कर्म ने लोगों में मुक्त प्रकार का मंगन है, तदर्थम कर्म संघ मुक्त संघ समाचार। एक इसी श्लोक को भी हम लोग यदि अनुसरण करें तभी हमारा जीवन सुप्रतिष्ठ हो जाएगा। कहते हैं यज्ञाभ्यास करना, भगवान की प्रीति के लिए हम झाड़ू भी देते हैं मंदिर में, ये भी यज्ञ है। यज्ञाचा कोई ये नहीं है कि अभी मैं नहीं चाहा ओम काम दिखने चाहे इत्यादि चाहिए नहीं, बल्कि अपने को ही भगवान के चरणों में खुल कर मुझसे अर्पित कर देना। गोपाल मंत्र इत्यादि में चाह पत्र का पाठ कर ली इसी रूप में, और यही प्रकार से यज्ञ है। यज्ञाथा तो कर्म है, जो भी कुछ करो भगवान के लिए, भगवान की तुति के लिए। यज्ञाथा कर्म में लोक मनक का कर्म बंधन है, और जितने भी कर्म है उसके अतिरिक्त वो कर्म बंधन है, इसलिए तत्थम कर्म निकली उनके लिए ही कर्म करो। इसलिए वहां पर बताया गया और भी बताया गया अनाशक्त होकर के करो, आसक्ति के सही तो नहीं इस जगत के कर्म, आसक्ति भगवान के कर्म में। पत्रम पत्रम फल स्वयं जो मे भक्त्या प्रयत्ति अधम भक्ति सुखम स्नानी प्रजतात्मा। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रजतात्मा न है भगवान की तुति के लिए यज्ञ करता है अंतर हृदय से, ऐसे नहीं दे दिया लिया तो लिया नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं यत्न करता है अंतर हृदय से। तो कहते हैं पत्रम पुष्पम कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है कोई बात नहीं, मन तो है हृदय तो है, हृदय के साथ में एक तुलसी का कोमल सा पत्ता ले दो। पुष्पम कोई भी पुष्प उनको दे दो, फलम कोई भी फल हो अपने कर्मों का फल हो ऐसा ये फल हो, बजा के अपने लिए बजा के फल मन खत्म जाए प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के लिए ये भी प्रसन्न इहा अवस्थन कम कर्मन सब चिंत जगत, ये सब प्रभु का है प्रसाद के रूप में। भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए जितना जरूर बस उतना ही ग्रहण करेंगे, और नहीं तो भाई मरण होगा, बड़ी अशांति हो जाएगी, हम इसके मालिक नहीं आता समझो। ये यज्ञ का यही तात्पर्य है, यज्ञ अर्थात कर्म न लोक अनुमत का कर्म बंधन, यह तो कर्म का बंधन हो जाएगा। इसलिए जब करो थी जब सुनासी जब भी होती जब तपस करती सब कुछ कुछ के कर्मों में अर्पण, किसको अर्पण करें ये समझ लीजिए। कृष्ण गीता में कहते हैं श्रीमद भागवत में कहते हैं ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें कि नहीं कहा गया है मत्तः परतरम किंचित नास्ति समं, हे अर्जुन हमसे बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है जगत में, जितने भी अवतार हैं जितने भी विभूतियां हैं ये सब कृष्ण की विभूतियां, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के प्रकाश, कृष्ण के वैभव, ये सब मूल रूप में भगवान कृष्ण है। और इसलिए भगवत भगवत्ता नहीं सबसे अधिक भगवत्ता भजन मनंदन श्याम सिंह राधा सिंह कराधारण गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सिंह, थोड़ा सा वैशिष्ट है मथुरेश कृष्ण द्वारकेश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण, क्योंकि वहाँ अभी हम लोगों का अभी कृष्ण हम नहीं जाएंगे सीता धाम रखने गीता के कभी हम चल रहे हैं अभी, इसलिए यहाँ कृष्ण को ही पत्थर तो समझे, कृष्ण से बढ़ करके कोई तत्व नहीं है, कृष्ण के समान कोई दयालु ही नहीं है। श्रीमद्भागवत इत्यादि में वर्णन किया गया है कितना उनको सांस की अपनी कमी में लगा करके गई मारने के लिए और उससे मुक्ति ही नहीं भक्ति उसी गति दे दी, जो लोग बैठी उसने उसकी गति दे दी। ऐसा दयाली कौन होगा जी जिसका भी सब भजन करें। अब विशेष आपके ब्रज में कहीं भी ब्रजमंडल में कहीं भी जन्म हो और कृष्ण को छोड़ करके किसका कम भजन करें। इसलिए कहते हैं जब पड़ोसी जगत सुनाती जगती होती जगाती जब तपस्त कौन के सब पुरुष मदापन अर्पण करते। किंतु यहाँ पर एक बात बतलाना चाहूँगा, इन दोनों श्लोकों में कुछ वैशिष्ट है। कृष्ण को अर्पण करना माने अपनी कोई चीज कृष्ण को देना, और जहाँ अपनी चीज है ही नहीं है, शरीर भी नहीं है, मैं भी अपना नहीं हूँ, मैं सब कृष्ण का, इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम सर्वम ब्रज हम स्वाम सर्व पाप के मुक्त स्वामी के यहाँ जी कहा। भाई पहले अपने को ही अर्पण करते इसी संसार के साथ इसमें भक्ति क्यों न लगता, पहले अपने को अर्पण कर दो उनका हो जाओ फिर तुम्हारा सर्वस्व उनका हो जाएगा, फिर अर्पण करने की जरूरत नहीं है। अर्पण करने में कुछ घटिया किस्म की भक्ति होती है, सगुणों सगुणों का उपासना हो जाती है, सती भक्ति हो जाती है, वो निर्गुण भक्ति नहीं है। निर्गुण भक्ति है अपने को भगवान का बना लो और तुम्हारा सर्वस्व भगवान का हो जाए, उस समय में जब करो उसी जगह सुना। इसीलिए इन सब लोगों को उपदेशों को महाप्रभु जी ने कहा हो बाध्या जो कहा। और आगे थोड़ा सा चलिए, अब हम लोग चलते हैं गीता के सातवें अध्याय में जो बताया गया उसको हमने बताया था, वो है द्वितीयतम। द्वितीयतम में नौवां अध्याय जो है उसमें भगवत तत्व का विश्लेषण किया गया और उस भगवान के प्रति हम उनके कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता से कैसे हम किसी और शांति हो सकते हैं, ये सब चीजें का उसमें विश्लेषण किया। उसमें कर्म के लिए बतलाया गया है जितनी भी अच्छा कर्म करो करोगे तो तंग भुक्वा सर्वलोकन भी पालन तीनों तुम्हें मतलोकन भी समझी। भाई वहां से गिरना पड़ेगा सर्वलोक से जितने भी अच्छे कर्म करोगे, भाई उसमें सुख और शांति नहीं है, इसे इधर मत जाओ। उन्होंने कहा जो प्रकृति की उपासना करता है प्रकृति में जाता है, जो पृथ्वियों की देवताओं की उपासना करते हैं दो लोक में जाते हैं, जो ऋषियों की उपासना करते हैं ऋषि लोक में, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि माँ पुरुष निधन का प्राप्त होता है क्योंकि वहां से इसका जुड़ना नहीं होता, वहां से जो कृष्ण का जन्म करेगा वो हमें पाएगा और फिर यहाँ से कभी भी नीचे नहीं करेगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, क्यों कि ये बतला रहे हैं तपस कभी टूटे देगी कर्म भक्त कभी टूटे देगी ज्ञानों को भी मतोधिकर तस्मा जो भी भगा जो भी नाम सर्वेशाई मदगते न अंतरात्मा श्रद्धामान भगते जो मन समित करने से जो भी बड़े हैं ज्ञानों से भी जो भी बड़े हैं सब कर्म योग भी है। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीन मार्ग नहीं है, एक ही है। केवल रास्ता पहला रास्ता का पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग, जैसे एक कच्चा आम एक अधपका आम और एक या पका हुआ आम, इसी तरह से कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग कोई अलग तीन योग नहीं है। उसके पहले भाग कर्म योग दूसरे को ज्ञान योग तीसरे को भक्ति योग कहते हैं। तो इसमें हम अभी तपस से भी कोई योगी तप योगी की अपेक्षा कर्म योगी से श्रेष्ठ ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ योगी और योगियों में योगी नाम सर्वेशान मदगते में अंतर आत्मना अंतर मन के हमारे प्रति योग कर दो। जो कर्म जैसे एक और एक दो होता है वैसे प्रभु की सेवा में से मिलो उनकी सेवा करो। मदगति में अंतर आत्मना अंतर आत्मा से इससे बढ़ करके कोई ये भी नहीं है। ये सब भी बतलाया हम लोग भी जब अभी जो गुह या गुह परिचय आदि बतलाया है अपने मन का संदेह किसी प्रकार के भगवान के चरणों में कर दें। और जैसे कि गीता के 9 अध्याय के मन मन अभाव मत भक्ति इत्यादि का यदि कर दें तो हमने का जीवन चरण के में सफल हो जाएगा। यहाँ तक लोग बहुत कम पसंद करते हैं और भी मेरी सब चीज को सुना। 12वें अध्याय में जिसका भी आप लोगों ने बात किया साधारण नहीं है। गीता का बल्कि सार इसी में है। गीता का एक तेजी है और एक भक्षण है। एक से लेकर के 6 तक तेजी है और इधर का ऊपर वाला जो 6 अध्याय है वो ऊपर का भक्षण है और एक जीत का जो भाग है 9 से लेकर के ये 12 9 और 12 इत्यादि ये गीता का सर्वोत्तम होते इस स्थिति के अंदर में और रत्न की धातु ये गीता एक संपूर्ण सोने के खाल या वक्त के और भीतर में ये सब उपदेश है। कहा न गया कि क्लेश अधिक तरफ क्लेशम अव्यक्त आ सकते के कथन मैं ब्रह्म हूँ मैं निराकार हूँ भगवान निराकार हैं हम भी निराकार हैं। जितने गीता यहाँ पर भागवत के बड़े बड़े वक्ता ले जाए हैं बहुत दुख होता है लाखों जनता से जाती है इन चीजों को समझ नहीं पाती। ऊपर से दोषा रंगीले और पुष्टित वाक्य कह करके भगवान से निराकार बना करके उड़ा देते हैं और जीते भी और अंत में कहते हैं कि ऐसा हो गया ये अंगुष्ठ और ये अंगुली दोनों मिल गई और एक हो गया क्या एक को या पत्थर हो गया ये क्या हो गया निराकार निर्विशेष निरंजन निष्क्रिय अनादि अनंत भगवान ऐसे ही हैं वो तो रसमय है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन ने ये सब सुना तो अधिक तरह कैसा अव्यक्त आ सकते कथन जो अव्यक्त भगवान को निराकार मानते हैं जीव को भी निराकार मानते हैं और अंत में दोनों का मिलन करके एक वस्तु बना देते हैं उन्हीं उसमें कोई चेतनता उसमें की रस विचार क्रिया किसी नहीं है ये तो भगवान को सीधा बना दिया निर्विशेष बना दिया। इसलिए कहते हैं कि भाई इससे थोड़ी सी चित्त सिद्धि होगी और यदि साधुओं का संग हो जाएगा तो लगते पराम पराभक्ति राम हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है जो होगा ही साधु संग के करने सब कुछ है साधु संग सर्वशास्त्र है बिना साधु संग के नहीं और जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक ऐसे रसी कर्तव्य और वैष्णव का संग नहीं होगा तब तक गीता का ये सब समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इसमें केवल आ सकते हैं आप लोग भगवान को कभी निराकार मत समझिए। अर्जुन को उपदेश देने वाले कहते हैं कि हम अपने को अंगी दिखला के कहते हैं तो हम यही कह रहे हैं और यही कह रहे हैं माम ये बजे सकते हैं माम माम मन किसको जब भी वो आप व्यक्त है तो मन किसको कह रहे हैं मुझे मैं कौन हूँ कृष्ण हूँ अंग दिखला करके कहाँ पर करें चलते हैं शाम सुंदर है ऐसे लेके कह दें निराकार गीता निराकार है तो ऐसा नहीं गीता का उपदेश नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अंत में जब अर्जुन ने कहा मैं सब आपको उपदेश हूँ अब कृपया हमको इनमें से मुझे क्या करना चाहिए मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है थोड़ी सी आप कृपा करके मुझे बताइए मेरे लिए क्या भगवान द्रवित हो गए द्रवित होकर के कारण देखो तुम हमारे बड़े प्रिय हो और मैं तुमसे सार्वद्वेशीय तमन तुमने परमम बचा गुह्यतम हो गया गुह्यतम भी हो गया अब यहाँ पर सर्वद्वेशीय तमन परमम बचा है अब इनको बतला रहे हैं कहाँ बतला रहे हैं संस्कृत में गीता के अस्था रहे हैं कैसा क्या कौन सा ट्रांसलेट होगा इसमें बतला रहे अंतिम में बतला रहे हैं मन मनाभव मन मनाभव मद भक्तो मद यागी मान नमस्कार मान एव उच्च सत्य में प्रिय अर्थात मन मनाभव ऐसा करो चित्त हमारे में लगाओ कैसे चित्त लगाओ कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को भेज रहे हैं प्रभु ने। गीता सूत्र है, विस्तृत ग्रंथ नहीं है, व्याख्यान ग्रंथ नहीं है, क्योंकि समस्त उपदेशों को उपदेशों और वेदों का भारतीय बान्य बनाता ये चित्र है। जैसे वेदांत चित्र है इसको कमर्शन नहीं है, इसलिए गीता परिषद इसको कहा गया। इसमें कहते हैं मन मना भाग अर्जुन, जो कि सच्ची सच्ची हमारा प्यारा है, मैं तुमको उपदेश देता हूँ, मन मना भव, अपने मन को हमारे में दे दो, हमारे में लगा दो, हमारे दे दो। कैसे? इसी के लिए तुम्हें भागवत में जाना पड़ेगा, इसका उदाहरण खोजने के लिए। उद्धव जी को कृष्ण भेज रहे हैं ब्रज में, कहो ब्रज में जाओ, हमारे मिता माता पिता बड़े दुखी हैं हमारे लिए, विशेष करके का मन मनाता मत प्राणा मदद के उपेक्ष कई है। का मन मनुष्य का मन मनुष्य मत प्राण मदद के उपेक्ष गई है का मामेर दैतन कृष्ण अपमान मन का बता उधर प्रश्न जाओ मन मना दिए। ये जो है इसकी व्यक्ति रखना है का मन मनस्ता, वो अपने मन से दे दिया, मन का बता मन को भी हमारे अंदर में दे दिया है। कैसे दिया है देखेंगे इसको भ्रमर गीता में। गोपियां जब कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं तो तीसरे अध्याय में देखिए इसमें भागवत का जो प्राण है पंच प्राणों में मुख्य प्राण है वो गोपियां कैसे हो गई है शरीर की सिद्धि भी नहीं है ऐसी हो गई है। मैं छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, इसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। राधा जी एक भ्रमर को देखा, अब भ्रमर को देख करके कहती हूँ तो कहीं ये चित्र का कोई काले का काला दीपा है, सचमुच में अंतर बाहर काला है, अपने वृक्ष पर ये कुमकुम कहीं से लगा सकते हैं और अधिक मान हो गया। उद्धव जी भाव ये दूर से खड़े हैं देख रहे हैं, नंद बाबा कहीं प्रेम देख करके दूसरी को सोचा जा था पहले जो कृष्ण को छोड़कर के मैं कैसे प्रज्ञा जाऊंगा, इन्हें का समय पा करके कृष्ण को धीरे देखा जो कृष्ण तो संपूर्ण की है वो मथुरा में तो है नहीं और हम तो अंकित रूप में कला रूप में है देखा देखने को निकलती है। राधा जी कह रही हैं भाव में भी ढेर हो सकता है, सभी का कोई होश नहीं, उससे बात कर रहे हैं जो तुम्हें एक भ्रमर है जिसे पास वो भ्रमर राधा जी के चरणों के पास कर रहे हैं, प्रश्न घूम रहा है, मानो समझता है कि ये समझ वो समझती है कि ये कह रहा है हमको कृष्ण ने भेजा है, आप उनसे सुलह न कीजिए, आप उन पर मान मत कीजिए, वो निर्दोष है, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। ऐसा सुंदर से वर्णन किया है रसी की वृद्ध है, रस्ते का पुत्र स्थिति को नहीं समझे, विशेष करके जब उन्होंने कहा मृदु ऊपर संगम दबे हुए लिखित धर्मा, इस श्लोक में तो चरण हट कर दिए हैं, पीरा गया एकदम भूल गई है। वो अपने आप छोटे छोटे कृष्ण को सामने होकर के अपने को समझा कि मैं ही कृष्ण हूँ, क्योंकि ये वो ब्रह्मवाद नहीं ये प्रेम का एक विचार है। एक छोटी सी लघु कथा यहाँ पर मैं उपस्थित करता हूँ। ब्रज में कोई नवेली अभी दो चार दिन हुए विवाहित होकर के कोई भाई कृष्ण वो चारण करने के लिए सवेरे जा रहे हैं अपनी कथाओं के साथ में, चारों तरफ में खुला हुआ जो कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं और कि तो बादशाह बच्चे बूढ़े बूढ़ी बच्चियां लड़कियां किशोरियां विवाहिता अनविवाहिता यहाँ तक कि अंधे भी अंधे का हाथ पकड़ करके कृष्ण का ये गोचारण जन्म लीला दर्शन करने के लिए चलने लगे। कोई अपने दरवाजे के पास में खड़ी हो गई नवेली, कोई खिड़कियों से झांक रही है, कोई दरवाजे के पास करके खड़ी हो गई। इस तरह से ब्रज में ऐसा कोई नहीं था जो निकल करके दरवाजे पर न आ गया हो और कृष्ण से इस मछली का दर्शन करने भागवत में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया। वही यहाँ से धन्य है जो कृष्ण को इस समय कृष्ण और बलदेव के साथ में जाते हुए अथवा बलदेव जी के पीछे पीछे जो कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं उनकी बड़ी सुंदर व्यक्ता हमारे मत में उन्होंने की थी। जो कृष्ण बलदेव नहीं कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले मधुर बंसी बजाने वाले जो कृष्ण जो जा रहे हैं सबके लिए मुख्य विचार बिंदु से सबके नजर से गोपियों की तरफ में वो देखते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे कृष्ण का जिसने दर्शन नहीं किया उसका जीवन और उनकी आंखें नर होने के बाद उनकी आंखें व्यक्त हैं जितना देख रहे नहीं सकते मेरे लिए तो उसकी साफ कर रही है और व्यक्त अभी आपकी मत जाना तो मैं तो जाऊंगी दर्शन करने के लिए उनका मत जाना और आप भी जंग है बड़ा भी सुधर है बात देगा तभी बीच नहीं करेगा मत जाना खबर का मैं किसका बतला रहा हूँ मन में माधव हो कैसे मन में माधव होता है इसका एक झांकी देने के लिए तो कह रहे हैं मत जाना कभी तो तुम्हारी लड़की भी जा रही है लड़की जा रही है तो फिर से जाएगी तो मत जाना अरे इसकी बहू भी तो जा रही है मैं कहती हूँ हमारी बात मैं कर सकते हैं मैं इस बात को समझती हूँ कभी बीच नहीं करेगा जीवन का नहीं तो मैं तो जाऊंगी मेरी बात नहीं तुम्हारी आप तुम क्यों जा रही है बुद्धि होगा किसी कैसे नहीं मानी वो आगे उनके बुढ़ी पड़ गई आगे पहले तुम जाए मैं अभी आ रही हूँ उसके पीछे पीछे ये भी चल गई और दरवाजे पर जा करके खड़ी हो गई से कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चले जा रहे सफा ले जाने का उसके घर बढ़ा तीर मत वर्गते कर्म ये वो ठीक वही की प्रतिमूर्ति कृष्ण बड़े ही सुंदर निभावने और रसिक कृष्ण चले जा रहे आंखें उनकी मानसिक खोज रही हैं किसको खोज रही हैं कुछ नवेलियों को खोज रही हैं नजर गई उनकी देखा उन्होंने और वो तन्मय होकर के उनसे देख रही है कृष्ण को कृष्ण ने सोचा जिसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए सबकी मनोकामना वो कृष्ण को नहीं करते हैं बस वहीं से एक बछड़े के बीच का जो उसका पीठ थोड़ा सा ले दिया और सुंदर हंस का बछड़ा सुझता हुआ एकदम ऐसा कृष्ण ने विरक्ति उसको दिया जैसे एकदम सिर्फ दरवाजे के पास में पहुंचा और जब कृष्ण उसके पीछे से मानस को पकड़ने के लिए जा रहे हैं बस झट यहाँ पर पहुंची गोपी एकदम तन्मय होकर खड़ी थी कृष्ण को देख रही थी कृष्ण ने अपनी बंसुरी दी और उसके सिरित में थोड़ा सा उस पक्ष आ गया उसके तरफ में ऐसी मनमोहन उसके दृष्टि से उसको देख वो कृष्ण उसके भीतर में जाकर उसके मन को अपहरण कर दिया और लेकर के साथ ही साथ में कृष्ण उधर से छलांग मारते हुए चले गए बस गोपी रही उसका शरीर रहा मन कृष्ण के साथ में खड़ी की खड़ी रह गई कृष्ण चले गए भूल भी उड़ना बंद हो गया सब लोग जहाँ तहाँ अपने अपने घरों में चले घंटे बीत गए वो दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई साथ में कहा था ना मैंने कह जाएगा भी चलो 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 खिलाया करो ये उसका मन तो होश में नहीं है और या घर से कोई मत कर लाओ दही का और मन संकर अभी तो जाओ जाओ कहा तो दिया तो मन तो था नहीं घर में गई और मटके के बदले में सरसों का मटका उठा लिया और दही का वो लेकर के मंथन मंथन और उसी राई के मथने लग गई दूध है दही है क्या है उसको ये ज्ञान है क्योंकि चित्र उसका नहीं मन में भाव कृष्ण के साथ है क्या समझ रहा अरे क्या कर रही इसके विषय ऐसा कोई काम दे जिससे किसका लोट है बस होश में आ जाए। उन्होंने इसको कहा पानी लाओ तो पानी भर लाओ, एक घड़ा दे दिया इसके सामने, एक घड़ा दे दिया, रस्सी भी नदी से दे दी और एक छोटा सा बच्चा भी उसकी गोद में दे दिया। कुआं कुछ दूर कुएं पर गई, बच्चे को उतारा, घड़े को भी उतारा, रस्सी भी निकाली और उसने सांस बनाया, उसमें बांध करके एक घड़े में और उसके नीचे गिराए भी पानी भरे। मन तो है नहीं, मन मना भाव है, उसने उस रस्सी को लेकर के उस बच्चे को जो दिखाया था घड़ा समझ करके उसी के गले में लेकर के और फंसने लगी। जो कि इंकारी ये देखो 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 क्या करे, अरे अरे सारे 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 कोई कहती है इसको भूख लग गया। आज जानती है इस विषय को, जैसे किसी का चित्त हर लेते हैं ऐसे ही होते हैं। उन्होंने सिर्फ इसको भूख नहीं लगा, इसको नंद का भूख लगा, समझ गई है। इसको कहते हैं मन में ना भाव, न जाने कब तक होश में आई कि नहीं आई। इसके बाद में बनी तो नहीं किया गोपी हमारे जो सामने, क्योंकि ये उदाहरण दिया ये मन मना भाव। यदि ऐसा मन कोई चित्त में चित्त दे दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए विशेष करके गोपियाँ और उसी गुरु यदि मिल जाए, कहीं लड़का भी साथ में मिल जाए तो ऐसा कुछ है। तो गीता का यह कर्म जो उपदेश है मन मना भाव, ये अर्जुन ने हाथ दे करते प्रभु ये ऐसा संभव कर नहीं है, ये युद्ध चित्र है, ये कैसे है ऐसा मन मना भाव अपने मन को दे दें कि युद्ध आप कहते हैं युद्ध भी करो और हमारा स्मरण भी करो तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने मदभक्त तब द्वितीय रूप में मैंने कहा अच्छा और थोड़ा संकेत यहाँ पर जो करा है सर्वण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्पणम बंदनम दर्शन अथवा देव सिंह महान अनन्य चिंतन को मांगे जने जना पर जिता सके तेषा नित्य अभिजिता वेद से मैं महान्यहम। अभी होश है भगवान क्रिया कथाओं का आचरण करते हैं, सत्यज्ञान भी उनका पहला जो हो गया है ये हो गया है, दूसरा विजयतर भी उनका हो गया है, इससे ऊपर दूसरे में विजयतन भी हो गया है, अब तब विजयतन में आने वाले हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी भावावस्था तक पहुँचते हैं। जैसे दिल्ल मंगल का था, दिल्ल मंगल को साधक कहते हैं, इसके नीचे वाले अभी साधक नहीं है, विशेष करके राधा मंडा के भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैदिक भक्ति और एक होती है राधा मंडा। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके इस राधा मंडा प्रेम में भक्ति को देने के लिए जगत में आए, गीता का भी वही उद्देश्य है उनका नहीं, क्योंकि चित्त रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया। इसलिए यदि जिसका मन ऐसा नहीं हुआ कि हम इनमें चित्त में अपने चित्त को देख सकें तो इतना तो कर सकते हैं कि भगवान का सततम चित्तयन को मन जो गण कर जुटा सके, भगवान का कितना कर सकते हैं, उनका कथन का कहीं कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जैसे दिल्ली मंगल, क्योंकि जैसे दिल्ली मंगल जी ने किया ऐसा नहीं हो तो ठीक है। अभी जो कैसे हम सुनते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अर्जुन, बहुत दिनों की बात है, गीता का अनुशयन करते थे और गीता के समस्त विषयों पर उपदेशों का बड़ा उनका बहुत ही श्रद्धा थी, उसके टीकाकार भी हैं गीता के। उन्होंने और मैं समाप्त ही करना चाहता हूँ गीता का अंश में, तो अर्जुन जी जब गीता के श्लोकों की का अर्थ और व्याख्या करते हुए इस श्लोक पर आए अनन्य चिंतन को मान जो जना कर भी पा सके ऐसा नित्य अभिजुक्ता नाम जो उससे न वाहन है, जो लोग सब समय अनन्य चित्त होकर के अपने समस्त सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरण बज होकर के स्वरूपतः और शुद्धिंतः सब कर्मों को भी हमें छोड़ दिया। एक होता है कर्म में आसक्ति छोड़ करके कर्म करें एक ये त्याग, और एक होता है स्वरूपता अर्थात आसक्ति और स्वरूपता भी इसको छोड़ दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु त्यागी सुखदेव गोस्वामी नारद जी ये स्वरूपता और फलता देने को और लोग हैं जिसको उन्होंने निष्काम कर्म त्यागी किया। तो इन्हें बताते हैं यदि कोई व्यक्ति स्वरूपता की कर्म को छोड़ दे कभी कुछ न कुछ खाने के लिए इत्यादि के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भगवत उपासना में बना करके करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मनमना मद भक्त कैसा, जैसे अर्जुन जी कर रहे हैं गीता का करते करते जब अंग्रेज लेता है जो अनन्य रूप से हमारी भावना करता है और उसके और करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, खाने पीने इत्यादि के लिए योग और क्षेत्र जो चीज़ नहीं है उसको दे देना आवश्यक, और जो चीज़ें हैं उसकी रक्षा करना ये क्षेत्र है। मैं स्वयं अपने कंधे पर धो करके पहुँचा रहा हूँ, मुझे आज 85 वर्ष हो गए गीता पढ़ते हुए और भगवान का भजन करते हुए, आज तक धो करके भी हो सकता है किसी के माध्यम से कोई चीज़ पहुँचा दें ये तो मैं मान सकता हूँ, धो करके नहीं मिला। उन्होंने एक लाल काली से स्याही से इस पर उन्होंने काट दिया और काट करके चले गए भिक्षा में। उस दिन दो पहर चार तीन पहर तक उनको कुछ भी भिक्षा नहीं मिली, लौट रहे घर में तीन प्रहर पर। इसी के बीच में दो पहर में एक छोटा सा शनिवार का लेना सितंबर का टकरा कहीं हुए साधारण बालक जैसे एक बहनी पर बहनी कहते हैं कंधे पर रखते हैं, दोनों तरफ में बड़ी बड़ी टोकरियों में चावल दाल आटा घी मैदा दूरा जो सब सामान होना चाहिए सभी सामान दोनों पर भरा दिया, और छोटा सा बालक की सोच 13-14 वर्ष का भी कभी बहुत कोमल की अंदर पसीने से लग कर हंसता हुआ दरवाजे पर आया। मैया दरवाजा खोले बड़े सीधे कंठ से बोला, उनकी पत्नी ने कहा ये कौन है, मैं पंडित जी का शिष्य हूँ, उन्होंने कुछ सामान भेजा है। तो उन्हें खोल दिया, एक तो कुछ कपड़े कम ढकने के लिए नीचे ब्राह्मण देवता ही उनके कपड़े पहन करके चले गए फटा फटा कपड़ा, उन्होंने अपनी अपना पितांबर खींच दिया उसके ऊपर में और दरवाजा खोल दिया उन्होंने। दरवाजा खोलने के बाद लिए लेकर के भीतर में पहुंचे पश्चिमी से अच्छा मुख कुछ सीखा हुआ क्रांत हो गए हैं। अरे बेटा वो पंडित जी कहाँ है, पंडित जी भी भरी जा रहे बोली के बेटा तू ये जाकर के हमारे घर में गया मैं आ रहा हूँ, तो इतना भाग तुम्हारे कंधे पर खेल गया, ये तो बड़े निश्चित आज तक मैं उनसे तो निश्चित नहीं जानती थी। मैया क्या कहें केवल इतना भारी ही नहीं, उन्होंने बुलाया मेरे आने में कुछ विलम्ब हो गया और विलम्ब होने के नाते मुझ पर बिगड़ गए और अपने नाखूनों से मेरे पीठ में बिगड़ गए। देखा पच्चीस में ऐसे नाई रक्त एकदम हो रहा है लाल एकदम देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इतने निश्चित पंडित जी आ जाते हैं तो मैं देखती हूँ सकते थे अपने आधा सामान वो खुद ही ले सकते थे, दूसरे शिष्यों को बुला लेते सब सब को दिया और उसको भी ऐसा बकोट दिया नहीं नोट दिया ऐसा पत्ती को देखा आने दें तो तुम बैठो मैं अभी ऐसे जमाती हूँ साथ ही करके जाना ऐसे मत चला जाना अभी बैठे नहीं बच्चा साथ में उसके चावल और ले करके और ऐसे ही जमाने के ऐसे ही घर में गई और इस समय थप थप की आवाज़ हुई सामने पंडित जी ने कहा दरवाजा खोलो, ये कुछ टूटी हुई कुछ बिगड़ती हुई वो रोष में भरी हुई पंडित जी को देखा गली कटी सुनाई हुई दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला पंडित जी उन्होंने उलाने दिया, अरे इस बच्चे के ऊपर भी इतना भाषण नहीं दे दिया तुम नहीं ला सकते थे आपने तुम्हें फल्ले ऐसे ही हाथ घुमाते हुए चले आए और बच्चे पर सब भाग दे दिया और ऊपर से आपने उसने सब काट दिया, अरे कौन बच्चा कहाँ सामान कहाँ क्या मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा पता भी नहीं है, अरे बच्चा कहीं पर बैठा हुआ है तो चलो से ज़्यादा बच्चा देखती गया देखा तोड़ के ढूंढते 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 कहीं बच्चा देखा गया वो लाना तो जीता जीता लाया उनके सामने दिया गया देखा खोल करके जो वो जो लाल चीन है जो स्याही का बना हुआ था लाल स्याही नहीं है आँखों से आँख में सुधार आदमी लगी और अपनी इसी से चलने पर इतनी से भाग देती जो उनको देखा उनको संदेह हो गया था कि संदेह को दूर करने के लिए प्रभु जो वर्षन भी हम देंगे करते हैं यदि वैसा कोई भक्त हो तो हमारे लिए करता है वो ऐसा ही हो जाता है दोनों सुख से करते हैं। ये है मद भक्त भक्ति का ऐसा ही अनुशीलन होना चाहिए, ये गीता का तात्पर्य है गीता का तात्पर्य कर्म नहीं है, कर्म साधारण लोगों के लिए है जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो उनको वैदिक कर्म जैसा कि शास्त्र में बताया गया है सत्य भक्ति करें और उनसे विचारित होगा सत्य ज्ञान हो जाने के बाद में ऐसे अनन्य भक्ति करना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये हमसे इस विशेष क्षेत्र में नहीं होगा, हमारे लिए कुछ और कार्य करके कहिए। तब उन्होंने कहा नदी खबर हमारा जजन करो पूजा अर्चन तो करते प्रभु, पूजा अर्चन में तो घी इत्यादि सामान चाहिए, फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, ये सब यजन यज्ञ अथवा अर्चन इत्यादि यहाँ पर अर्चन इत्यादि से कार्य करना है, कोई द्रव्य से लेकर के भगवान का पूजन इनको अर्पण इत्यादि करना, इस यज्ञ स्थल में धनुष और बाण और ये सब चीजें भर करनी, इसमें ऐसा भाव मेरे लिए कहीं से संभव है। प्रभु कुछ और नीचे भी चाहिए, कुछ मेरे लिए ऐसा कहिए जो मैं मांग नमस्ते, इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। एक बार भी यदि कृष्ण को प्रणाम कर दिया फिर उसका जन्म नहीं है। कृष्ण का प्रणाम करने वाला कभी भी जगत में नहीं आ सकता, एक बार भी प्रणाम कर दे प्रणाम मैंने क्या प्रतिष्ठ विषय नमन करता है न माने अहंकार को दूर हित करके और भगवान के कहने का समर्थन करना ये प्रणाम का तात्पर्य। एक बार भी यदि ऐसा कोई सत्य अथवा कहते हैं कि सब एक अर्थ लीजिए भगवान को प्रणाम करते हुए उनका जगन करते हुए उनमें नौभा भक्ति या प्रतिष्ठा अथवा तीन प्रकार की भक्ति है प्रणाम से प्रणाम स्मरण अथवा एक नाम संकीर्तन ऐसा करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाए और उन कर्मों को भी करें तो भगवान उसको प्रसन्न हो जाते हैं। गीता का यही सदस्य अनुसार है यदि हम लोग इनमें से एक को भी या सबसे ही सामूहिक रूप में सीखकर यदि ग्रहण कर सके उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, फिर लौट करके इस जगत में नहीं। यही आज मैं संक्षेप में अपना वक्तव्य प्रकाश किया। हमारे पूज्य हमारे ये सब जो स्वामी जी की शास्त्री जी हैं और हमने से जब किसी गलती हुई है तो आप लोग इसके लिए लोगों की सुविधा और असुविधा को भी देख रहे हैं, इसलिए आज मैं अपने कुछ विशेष वक्तव्य दूँ ऐसा समय नहीं, साढ़े आठ बज सके हैं, इसलिए मैं केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अत अल्प समय में मैं अपने कार्य को समापन कर गोष्ठी का समापन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग ये भी समझें कि सर अब साढ़े आठ से नौ या साढ़े नौ बजेंगे ऐसा भ्रांति निकल जाएंगे, एक घड़ी आधी में तो आज सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी अपने चिंतन आकार चरणों को चरणों में निष्ठा से प्रबंधन करता हुआ आज के मुख्य अतिथि वंदनी स्वामी त्रिवेणी स्वामी की भक्ति वेदांत नारायण जी के चरणों में सत्य सत्य प्रणाम करती हूँ। आप ये एक बार राधा कृष्ण के विचार के लिए मुझे याद किया था और मैं उनके लौड़िया मठ में जाकर मैंने राधा और कृष्ण तत्व की एकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे और बताया श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ है। मैंने कहा श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ नहीं है, आप बहुत ही प्रसन्न हुए, आपकी दयालुता आप श्री राधा कृष्ण के परम आराधक हैं। अभी उनके शिष्यों में से एक व्यक्ति बोल रहा था सबका सत्य श्याम है और श्याम की आराध्य श्री राधा रानी है, राधा रानी को हम आज समझ नहीं पाए हैं, राधा सत्य बहुत ऊंचा है, इसीलिए राधा कृष्ण को प्रकट करना भी जैसे अपने मुख्य धन को लोग छुपाते हैं बेचैन होता है, अपने धर्म की चर्चा कोई करना नहीं चाहता। इस प्रकार हमारे वृद्ध तत्व का परम बेचैनीय तत्व सिंह राधा रानी विशेष में क्या कहें, आत्मान योधा का प्रतिष्ठ पत्नी के भगवान हमारे युग की आराध्या मुक्त व्यक्ति श्री राधा रानी वृतवान रानी ने किशोरी की है। यदि इन गौर तेज का कृपा हो जाए तो शाम से अपने आप हुए अभी रहेंगे। राधे के बड़े भागिनी कौन समस्या की तीन लोग पारण करण तो तेरे अधीन। महाराज इधर बरसाना है राधा रानी का तो इधर नंदगान की ठाकुर जी का है और बीच में प्रेम का ही है। सबसे प्रेम को श्री राधा ने कृष्ण के साथ किया, वह हमारे लौकिक व्यवहार में किसी को माता बना ले या किसी को पिता बना ले वो तो जगत जननी है।